फैजान जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर पहुंचा, उसने तुरंत इकबाल को फोन किया। हम पहुंच गए हैं, उसने कहा। कुछ ही देर में इकबाल और नूर बाहर आने लगे। नूर के चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट थी, जो उसके कदमों के साथ और गहरी होती जा रही थी। बाहर आते ही उसने अपने अब्बा की तरफ देखते हुए कहा, अब्बा, हमारा सामान तो अभी भी फूफी के घर ही है। मेरे पास पहनने के लिए एक सूट भी नहीं है। आपने मुझे जाने ही नहीं दिया, वरना मैं फूफा के साथ जाकर सामान ले आती। इकबाल ने ही उसे तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, सामान कर ले आएंगे। नूर ने अनमने ढंग से सिर हिलाया। फैजान गाड़ी लेकर सामने खड़ा था। सब लोग गाड़ी में बैठ गए। आगे की सीट पर इकबाल, फैजान थे, जबकि नूर पीछे की सीट पर बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। कुछ पल की खामोशी के बाद इकबाल ने फैजान की तरफ मुड़कर कहा, बेटा, क्या तुम्हें कहीं यूनिवर्सिटी के पास किसी लड़कियों के हॉस्टल का पता है? मैं चाहता हूं कि नूर। फैजान ने बात पूरी होने से पहले ही जवाब दिया, अभी तो मुझे किसी हॉस्टल के बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं पता करवा सकता हूँ। हाँ, पता करवा देना, इकबाल ने गंभीर लहजे में कहा। माँ, मैं नूर को कहीं छोड़कर नहीं जाना चाहता। जब तक इसे सही जगह हॉस्टल में नहीं छोड़ दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं, फैजान ने आगे से कहा। पीछे बैठी मूर को ये बात चुभ गई। उसने तुरंत विरोध किया, बिल्कुल भी नहीं। आगे बैठे लोग चौंक गए। फूफी का घर है, नूर ने गुस्से में कहा, रहने के लिए बिल्कुल ठीक है, और वहां रशीद फूफा भी हैं, वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं, मुझे हॉस्टल में नहीं रहना। फैजान ने शांत लेकिन साफ लहजे में कहा, मुझे लगता है कि आपके लिए रिश्तेदारों के यहाँ रहने से ज्यादा सही हॉस्टल में रहना होगा। इतना सुनते ही नूर का गुस्सा और भड़क उठा। आप चुप रहें, वो फैजान पर झल्ला पड़ी, और अपने काम से मतलब रखें। इकबाल का सब्र टूट गया। सॉरी कहो, उन्होंने सख्त आवाज में कहा। नूर ने हैरानी और नाराजगी से उन्हें देखा। मैं सॉरी क्यों कहूँ, वो बोली, और आप देखिए ना, ये हमारे रिश्तेदारों की बुराई कर रहे हैं, वहां मेरा रहना ठीक क्यों नहीं है? फैजान इकबाल के लहजे से समझ चुका। फैजान जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर पहुंचा, उसने तुरंत इकबाल को फोन किया। हम पहुंच गए हैं, उसने कहा। कुछ ही देर में इकबाल और नूर बाहर आने लगे। नूर के चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट थी, जो उसके कदमों के साथ और गहरी होती जा रही थी। बाहर आते ही उसने अपने अब्बा की तरफ देखते हुए कहा, अब्बा, हमारा सामान तो अभी भी फूफी के घर ही है। मेरे पास पहनने के लिए एक सूट भी नहीं है। आपने मुझे जाने ही नहीं दिया, वरना मैं फूफा के साथ जाकर सामान ले आती। इकबाल ने ही उसे तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, सामान कर ले आएंगे। नूर ने अनमने ढंग से सिर हिलाया। फैजान गाड़ी लेकर सामने खड़ा था। सब लोग गाड़ी में बैठ गए। आगे की सीट पर इकबाल, फैजान थे, जबकि नूर पीछे की सीट पर बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। कुछ पल की खामोशी के बाद इकबाल ने फैजान की तरफ मुड़कर कहा, बेटा, क्या तुम्हें कहीं यूनिवर्सिटी के पास किसी लड़कियों के हॉस्टल का पता है? मैं चाहता हूँ कि नूर। फैजान ने बात पूरी होने से पहले ही जवाब दिया, अभी तो मुझे किसी हॉस्टल के बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं पता करवा सकता हूँ। हाँ, पता करवा देना, इकबाल ने गंभीर लहजे में कहा। माँ, मैं नूर को कहीं छोड़कर नहीं जाना चाहता। जब तक इसे सही जगह हॉस्टल में नहीं छोड़ दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं, फैजान ने आगे से कहा। पीछे बैठी मूर को ये बात चुभ गई। उसने तुरंत विरोध किया, बिल्कुल भी नहीं। आगे बैठे लोग चौंक गए। फूफी का घर है, नूर ने गुस्से में कहा, रहने के लिए बिल्कुल ठीक है, और वहां रशीद फूफा भी हैं, वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं, मुझे हॉस्टल में नहीं रहना। फैजान ने शांत लेकिन साफ लहजे में कहा, मुझे लगता है कि आपके लिए रिश्तेदारों के यहाँ रहने से ज्यादा सही हॉस्टल में रहना होगा। इतना सुनते ही नूर का गुस्सा और भड़क उठा। आप चुप रहें, वो फैजान पर झल्ला पड़ी, और अपने काम से मतलब रखें। इकबाल का सब्र टूट गया। सॉरी कहो, उन्होंने सख्त आवाज में कहा। नूर ने हैरानी और नाराजगी से उन्हें देखा। मैं सॉरी क्यों कहूँ, वो बोली, और आप देखिए ना, ये हमारे रिश्तेदारों की बुराई कर रहे हैं, वहां मेरा रहना ठीक क्यों नहीं है? फैजान इकबाल के लहजे से समझ चुका था कि कोई गहरी वजह है, जिसकी वजह से इकबाल नूर को अपनी फूफी के घर नहीं छोड़ना चाहते। मगर नूर अभी इतनी नासमझ थी कि बातों के पीछे छिपे मतलब को समझ नहीं पा रही थी। इकबाल ने नरमी से समझाने की कोशिश की, देखो, वो हमारे रिश्तेदारों की बुराई नहीं कर रहा, वो तुम्हें सही बात समझा रहा है। सोचो, अगर कल को फूफी फिर बीमार हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, तो क्या तुम घर पर अकेली रहोगी? अकेली क्यों रहूंगी, नूर ने तुरंत जवाब दिया, मैं जहां आ जाऊंगी। इसी पल फैजान ने गाड़ी रोक दी। वे लोग फरीद खान के घर पहुंच चुके थे। गाड़ी रुकते ही नूर ने दरवाजा खोला और गुस्से से बाहर निकल गई। उसके कदमों में जिद थी, आंखों में नाराजगी और दिल में वो तूफान जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। पीछे गाड़ी में बैठे इकबाल उसे जाते हुए देखते रहे, इस एहसास के साथ कि बेटी को समझाना शायद आज की सबसे मुश्किल बन गया था। उसे माफ कर देना बेटा, इकबाल ने गाड़ी से उतरते हुए फैजान से कहा। उनकी आवाज में थकान भी थी और एक बाप की बेबसी भी। अभी बचपन है, इस दुनिया की उजली अंधेरी सच्चाइयों का उसे अंदाजा नहीं है। फैजान ने सम्मान से सिर झुकाया। कोई बात नहीं चाचा, उसने नरमी से कहा, मैं आपकी बात समझता हूँ। आप जो सोच रहे हैं वो नूर की भलाई के लिए ही है। इकबाल गाड़ी से उतर चुके थे, फैजान भी उनके साथ नीचे आया, लेकिन फिर वो पास वाले बंगले की ओर मुड़ गया, अरमान के घर की तरफ। इकबाल ने एक पल को पीछे मुड़कर देखा, जैसे कुछ कहना चाहते हों, फिर चुपचाप आगे बढ़ गए। जब नूर और इकबाल घर पहुंचे तब तक काफी रात हो चुकी थी। पूरा खान परिवार गहरी नींद में था। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, बस हल्की रोशनी और दीवारों पर चलती परछाइयां इस बात की गवाही दे रही थीं कि ये घर दिन में जितना भरा रहता है रात में उतना ही खामोश हो जाता है। दरवाजे पर सिर्फ घर की मुलाजिमा ही मिली। साहब, उसने धीमी आवाज में कहा, पूरी फैमिली अपने अपने कमरों में रेस्ट कर रही है, अब सब लोग सुबह ही मिल पाएंगे। इकबाल ने थके हुए अंदाज में सिर हिलाया। मुलाजिमा ने बिना कोई सवाल किए दोनों के लिए खाना लगवाया। नूर ने चुपचाप खाना खाया, ना अब गुस्सा था ना जिद, बस एक अजीब सी खामोशी उसके चेहरे पर तैर रही थी। खाने के बाद मुलाजिमा ने उन्हें उनके कमरे तक छोड़ दिया। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर फरीद खान की फैमिली नाश्ता कर रही थी। फरीद खान मौजूद नहीं थे। टेबल पर सिर्फ रेहाना बेगम, सादिया और रेहान बैठे हुए थे। बात अरमान के प्रोजेक्ट को लेकर चल रही थी। कंस्ट्रक्शन, टाइमलाइन और आगे की प्लानिंग पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान नूर और इकबाल वहां आ गए। दोनों ने सबको सलाम किया। आओ बैठो, रेहाना बेगम ने प्यार से कहा, ब्रेकफास्ट कर लो। हमें आज जल्दी यूनिवर्सिटी जाना है, नूर ने कहा, कल तस्वीरों की वजह से फॉर्म जमा नहीं हो पाया था। ये सुनकर सादिया बोली, तो ऐसा करो, रेहान भी उसी तरफ जा रहे हैं, तुम लोग उसके साथ चले जाओ। नूर ने तुरंत मुंह बना लिया। नहीं, उसने साफ कह दिया, मुझे किसी के साथ नहीं जाना। उसकी बात सुनकर सादिया, रेहान और रेहाना बेगम तीनों हैरान रह गए। नूर का ये लहजा किसी को समझ नहीं आया। अरे नहीं, सादिया ने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तो बस ये कह रही थी कि ड्राइवर तो ताया अब्बू के साथ गया हुआ है, तो आप लोग रेहान के साथ जा सकते हैं। बेटा, आप जो ठीक समझे, इकबाल ने नरमी से रेहान से कहा, वैसे भी ड्राइवर थोड़ी देर में फरीद साहब को छोड़कर वापस आ ही जाएगा। रेहाना बेगम ने भी हामी भरी, हाँ ड्राइवर आता ही होगा। मैं जा रहा हूँ, रेहान ने अचानक कुर्सी से उठते हुए कहा, उसकी आवाज में हल्का सा गुस्सा था। अरे रेहान, रेहाना बेगम कुछ कह पाती उससे पहले ही वो वहां से निकल गया। असल में बात ये नहीं थी कि रेहान उन्हें साथ ले जाना नहीं चाहता था, ऐसा तो कभी भी नहीं था, लेकिन जिस तरह नूर ने मना किया था उससे रेहान को अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी। बिना कुछ और कहे वो कमरे से बाहर चला गया। हम लोग टैक्सी से चले जाएंगे, नूर तुम यहीं बैठो, इकबाल ने नरमी से कहा, मैं तुम्हारी फूफी के घर जाकर पहले सामान ले आता हूँ, तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने के लिए कपड़े भी बदलने हैं। नूर ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अब भी वही कपड़े पहने हुए थी जो उसने कल सुबह पहने थे। रात भी उसने उन्हीं कपड़ों में गुजार दी थी। आंखों के नीचे हल्की सी थकान और चेहरे पर जिद मिली हुई थी। ठीक है, उसने बस इतना कहा। इकबाल बिना कुछ और बोले निकल गए। नूर नहीं बैठी रह गई, अकेली चुप अपने ही ख्यालों में डूबी हुई। सादिया ये सब देख रही थी, उसे नूर की हालत देखकर अजीब सा लगा। कल से वही कपड़े, उसके दिल में ख्याल आया कि कम से कम पहनने के लिए कुछ तो दिया ही जा सकता था। वो उठी और अपने कमरे में चली गई, अलमारी खोली और ऐसे कपड़े निकाले जिन्हें वो खुद ज्यादा पहनती नहीं थी। कपड़े लेकर वो नूर के पास आई, जहां नूर रेहाना बेगम के कमरे में उनके पास बैठी हुई थी। नूर, सादिया ने नर्म आवाज में कहा, ये कपड़े पहन लो, मतलब बाहर जाने के लिए ठीक रहेंगे। नूर ने कपड़ों की तरफ देखा, फिर सादिया की तरफ। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया। ये आपके कपड़े हैं, नूर ने ठंडे लहजे में कहा, मैं किसी के उतरे हुए कपड़े नहीं पहनती। सादिया थोड़ा असहज हो गई। नूर, ये उतरे हुए नहीं है, उसने समझाने की कोशिश की, मैंने इन्हें पहना ही नहीं है। लेकिन नूर ने सिर हिला दिया। नहीं भाभी, उसने साफ साफ कहा, मैं अपनी चीज कभी किसी को देती नहीं हूँ और ना ही किसी की चीज खुद पहनती हूँ। उसका लहजा शालीन था, लेकिन शब्दों में दूरी साफ छलक रही थी। अब काफी टाइम हो चुका था, मगर इकबाल अब तक वापस नहीं आए थे। नूर बेचैन होने लगी। उसने अपने अब्बा को फोन लगाया और चलते चलते बाहर लॉन में आ गई। कभी एक तरफ जाती, कभी दूसरी तरफ, बार बार फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन कॉल लग ही नहीं रहा था।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं।